इन्द्रेण राजन् भृगुभिषजीवितः सर्वात्मना तानवजा भृगुन्दनिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन। एक बार इंद्र ने बलि महाराज का वध कर दिया, उद्वासुर संग्राम में समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय की घटना। युद्ध हुआ देवताओं में और दानवों में, भगवान इंद्र वज्र चला दिए बलि महाराज पर, बलि महाराज मर गए, गिर गए। तो उनको कुछ दानवों ने उठा करके विमान से शुक्राचार्य के पास लाए, ले गए। तो श्रीपाद शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, मरे हुए को जिलाने वाली विद्या, इसमें तो संसार में ये विद्या नहीं है। उस समय भी सब जगह नहीं थी, केवल शुक्राचार्य इसको जानते थे। तो अपने शिष्य को बलि महाराज को उन्होंने जीवित कर दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्रेण, इंद्र के द्वारा पराजित श्री इंद्र का बलि का धन छीन लिया गया देवासुर संग्राम में। और अशुभिश्च हापित, अशुभि प्राणिश्च त्याजित, प्राण भी छोड़ना पड़ा बलि को, मर भी गए, सारा धन भी ले लिए इंद्र, लेकिन भृगुभी सह जीवित, भृगुवंशियों के द्वारा श्री शुक्राचार्य जी के द्वारा जीवित, जीवित कर दिया। जब बलि महाराज को जीवन मिला दूसरी बार अपने गुरु की कृपा से, बलि महाराज ने विचार किया कि हमें भोगों में नहीं रहना चाहिए, तप करना चाहिए यदि जीवन में विकास करना है। देखिए, मर करके व्यक्ति जिया है, उसका सारा धन देवता छीन लिए हैं, लेकिन उसका साहस और निर्णय कितना है। जब शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया तो वे क्या किए, सर्वात्मना तान अभजत भृगुन बलि शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदने, तान भृगु उन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा बलि महाराज ने सर्वात्मना किया, सब तरह से, मन से, वचन से, शरीर से, श्रद्धा से, भक्ति से, और अर्थ निवेदन, और पैसा से अर्थ निवेदन। बताइए, जो व्यक्ति मरे हुए को जिला दिया हो उसकी कौन सी सेवा करके आदमी ऋण से मुक्त हो सकता है। तो बलि महाराज बहुत कृतज्ञ हुए, हमारे गुरु ने हमको जीवन दान दिया, तो इस जीवन में बस इनकी सेवा ही करनी है, उन्होंने निश्चय कर दिया। सर्वात्मना, एक असुर होते हुए भी उन्होंने निर्णय किया कि ब्राह्मणों की सेवा मुझे करनी है, बहुत कृतज्ञ हुए थे। इसलिए सर्वात्मना अभजत, सब तरह से सेवा किए, क्योंकि बलि महाराज एक महात्मा थे। सुखदेव गोस्वामी यहां पर महात्मा, महान मन था, महान विचार था। पैसा खर्च करने में भृगुवंशी ब्राह्मणों के लिए उनके मन में कोई भी संकोच नहीं था। जो व्यक्ति अपने मन को, आत्मा को भगवान में लगा लेता है या उच्च विचार में, उसको महात्मा कहा जाता है। और जिसका चित्त संसार के भोगों में रहता है उसको कृपण कहते हैं, वो महात्मा नहीं है। तो बलि महाराज महात्मा थे। अब उनके मन में संसार भोगने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु देवताओं से, वंश परंपरा से बैर होने से स्वर्ग जीतने की लालसा थी, भोगने के लिए नहीं। बैर है, हमको उन्होंने मारा है तो हम भी अपनी शक्ति जुटा करके और स्वर्ग छीने, ये उनके मन में एक विचार। और प्रहलाद महाराज ने इसका अनुमोदन किया, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी देवताओं के विरोधी कुल में ही जन्म लिए, दीति के कुल में जन्म लिए हैं और देवता लोग अदिति के कुल, पिता दोनों के एक ही, दैत्यों के और दानों आदित्यों के। यह संस्कार था बलि महाराज में, स्वर्ग जीतने की लालसा थी, लेकिन थे महात्मा और शिष्य थे। शिष्यों महात्मार्थ निवेद देना, शिष्य थे ही, गुरु ने बड़े स्नेह से इनको जीवित किया था, इनको पाला था, पोसा था, तो इस बात की याद जब जब आती होगी बलि महाराज को, तो कितना कर्तव्य होते हैं, इसलिए वे सेवा करने लगे। सेवा में एक बात और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अर्थ निवेदन। एक हिंदी के कवि ने कहा है कि तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोय, जो धन से सेवा करे सच्चो सेवक सोए। और एक टीकाकार भागवत भी कहते हैं कि पैसा से सेवा किया बलि महाराज ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की, न तो शुष्क न निवेदन, न शुष्क से न आए। तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोय, जो धन से सेवा करे सच्चो सेवक सोए। वैसे ही कुछ बना लिया गया है वास्तव में। यदि धन न हो तो तन से वचन से सेवा ईश्वर हो परी है। तो बलि महाराज अर्थ निवेदन, जितना सामान चाहिए घर द्वार फैसिलिटी भृगुवंशी ब्राह्मणों को उन्होंने दिया। अरे जो प्राण दिया है, जीवन दिया है, उसके लिए अब धन देना कौन बड़ी बात, खूब सेवा किया उन्होंने। वे प्रसन्न हो गए, समस्त ब्राह्मण प्रसन्न हो गए इनकी सेवा से। सर्वात्मना का अर्थ शरीर से किए, मन से किए, वचन से किए। तो वे लोग फिर अपने शिष्य के लिए प्रतिदान किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम ब्राह्मणा भृगव प्रिय मारा अजाजयन विश्वजिता त्रिणाकम जिगीषमाणम विधिना विशिच्य महाभिषेकेण महानुभावः। वे भृगुवंशी ब्राह्मण महानुभावा, महान प्रभाव वाले थे, परम ज्ञानी थे, वेदों के परम विद्वान। तो वे प्रिय मारा बहुत प्रसन्न हुए बलि महाराज की सेवा से। अब देखिए, जो व्यक्ति मरे हुए को जिला सकता है और उसको फिर सेवा से प्रसन्न कर लिया जाए, तो क्या वो स्वर्ग नहीं दे सकता है? ये स्वाभाविक समझने की बात है। बलि महाराज ने जब सेवा किया अपने गुरु की और गुरु के परिवार ब्राह्मणों की, भृगुवंशी ब्राह्मण, जिसके प्रवर्तक भृगु महाराज के चरण के आघात को भी भगवान छाती पर सहे, उस वंश के वे लोग थे। यह भी एक बहुत बड़ी बात, भगवान कितना मानते थे भृगु जी को, कि चरण सहलाने लगे और कहने लगे, आपके आने का संवाद नहीं मिला था, नहीं तो मैं उठ करके आपका स्वागत किया होता, आपके कोमल चरण में चोट लग गई होगी मेरे कठोर वक्षस्थल के संस्पर्श से, आप मुझे क्षमा कर। उसी वंश के शुक्राचार्य जी, वंश का एक गुण आ रहा है, बहुत बड़ा ज्ञान। गीता में भगवान ने कहा है, कबीना मुसीना कवि, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूं। उसका अर्थ एक शुक्राचार्य के समान विद्वान कोई नहीं, ये भगवान की विभूति। और वे प्रसन्न हो गए सेवा से। जो प्रसन्न हो गए तो बलि महाराज से उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से पूर्ण प्रसन्न हूं और तुम अपने मन की इच्छा व्यक्त करो, तुम क्या चाहते हो। तो जिगीषमाणम त्रिणाकम, त्रिणाक का अर्थ है स्वर्ग। बलि महाराज ने कहा कि गुरुदेव, मैं स्वर्ग जीतना चाहता हूं, जिन देवताओं ने मेरा वध किया था मैं उनका पद हथियाना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। तो बहुत कठिन बात थी, लेकिन शुक्राचार्य जी भृगुवंशी ब्राह्मण थे, उनमें प्रताप था। तो विधि ना, वेद की विधि से महाराज का अभिषेक किए और महाभिषेक विधि पूर्वक यज्ञ चालू किए। वास्तव में उस यज्ञ में भगवान की पूजा की गई। देखिए, असुर होकर भी यह व्यक्ति भगवान की शरण ले रहा है स्वर्ग जीतने के लिए, और शुक्राचार्य जी ने भगवान का अभिषेक कराया इनके द्वारा और यज्ञ में दीक्षित किया। उस यज्ञ का नाम क्या था? विश्वजीत यज्ञ। यज्ञ का नाम भी अद्भुत था, विश्वजीता तृतीया। विश्वजीत यज्ञ। वेद में लिखा गया है कि यह यज्ञ करने पर व्यक्ति संपूर्ण विश्व को जीत सकता है। शुक्राचार्य तो वेद के विद्वान है, उन्होंने कहा ठीक है विश्वजीत यज्ञ करो। बलि महाराज एक यज्ञ किए, उस यज्ञ में पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की ही आराधना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से ही कोई विश्व विजय कर सकता है, और किसी देवता की कृपा से नहीं। तो भगवान की आराधना हुई विधि ना, विधि पूर्वक। महानुभाव है ही शुक्राचार्य और उनके परिवार के लोगों का कहना है ज्ञान कितना है, तो खूब अच्छी तरह से किए। और इतना अच्छा यज्ञ हुआ कि उस यज्ञ कुंड से रथ निकला, घोड़े निकले, धनुष निकला विश्व विजय करने के लिए। मंत्र ऐसे बोला गया और यज्ञ कुंड से सुंदर रथ निकला, घोड़े निकले और तरकस बाण सब निकलने, जो सिद्ध हो गए, सूचित हो रहा था कि विश्व विजय होगा। क्या क्या यज्ञ कुंड से निकले इसको बता रहे। ततो रथ कंचन पट नद्धो हयाच हरयस्व तुरंग वर्ण ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुतासना दास हविर्भिरिष्टा। ततः जब यज्ञ पूरा होने को था, आहुति दी जा रही थी अभी, कांचन पट नद्ध सोने के चादर से मढ़ा हुआ, ये सोने से मढ़ा हुआ एक दिव्य रथ निकला। यह अद्भुत बात है, लेकिन वेदों में ये सब शक्ति है, मंत्रों में। सोने का रथ निकला यज्ञ कुंड से, और तूणौ अरिक्तौ कवचम च दिव्यम। अरिक्त तूण, तूण का अर्थ है तरकस। आप लोगों ने देखा होगा चित्र में भगवान श्री राम तरकस रखे हैं पीछे, या अर्जुन ऐसे बाण निकालते हैं, धनुष पर रखते हैं, मारते हैं। तो दो तरकस आए अक्षय, उनमें से कितना भी बाण निकाला जाएगा वो बाण खाली नहीं होते, ऐसा अग्निदेव ने दिया। या ये कहिए कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के दिए, भगवान स्वयं दे रहे। एक तरफ तो बलि महाराज को स्वर्ग पर विजय दिए और दूसरे तरफ जाकर भीख मांगकर फिर सब ले लिए। ये भगवान की लीला है। तो तूड़ अरितव, भरा पड़ा तर्क, बाण से भरा हुआ तर्कस जो कभी क्षय नहीं होने वाला था, और कवचम च दिव्यम, और छाती पर एक कवच सिर बांधा जाता है, तो कवच निकला। शत्रु के आघात से बचने के लिए वक्षस्थल पर कवच पहना जाता था, सोने का कवच पहनते थे पहले के लिए। ये तीन चीज पहले निकली, और इसके बाद पिता महस्तस्य ददलच माला। जब ये सब निकलने लगे तो तस्य पितामह, बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज एक वैजयंती माला पहनाए जो विजय को सूचित करने वाले, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जीत लो स्वर्ग। एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया था कि प्रहलाद महाराज भी पूरा पारिवारिक भावना में आ गए। होता है भाई, जब पारिवारिक झगड़ा होता है तो एक परिवार के लोग दूसरे के विरोधी होते हैं, तो केवल इसी कारण से विरोधी होंगे कि मैं इस परिवार का हूं बस, और कोई बैर हो या ना। दैत्य में और देवताओं में कलह चलता ही है, और प्रहलाद महाराज दैत्य हैं, और उनका पौत्र आज विश्व विजय करने जा रहा है, तो वे भगवान पर चढ़ाई गई माला दिए जिसके पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं थे, अम्लान पुष्पा, अम्लान पुष्पा। इधर तो संसार में हम लोग माला बनाते हैं, एक दो दिन में मुरझा जाते हैं पुष्प, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जो माला दिया उसके फूल कभी मुरझाने वाले नहीं, और वह माला विजय को सूचित करने वाली थी। प्रहलाद महाराज ने आशीर्वाद दिया, और जलजम च शुक्र, और श्रीपाद शुक्राचार्य ने जलज दिया, शंख दिया, इसके बाद फिर निकला अग्नि कुंड से धनुष दिव्यम पुरटो पनर्धम, धनुष निकला यज्ञ कुंड से जो सोने से मढ़ा गया था, और ऊपर में भूल गया कहना कि घोड़े निकले, ध्वज निकला और धनुष से कहने में मैं कुछ इधर उधर हो गया। पहले निकला रथ घोड़े और ध्वज, घोड़े जितने थे सब हरे वर्ण के थे, ग्रीन थे, इंद्र के घोड़े का जो रंग है वही रंग था, भगवान इंद्र के चारों घोड़े हरे रंग के हैं। भगवान श्री कृष्ण जब सारथी बने थे अर्जुन के रथ में तो चारों घोड़े उज्ज्वल चंद्रमा के समान थे। तथा श्वेत हयर जुक्ते महती स्यंद में स्थित, श्वेत हयर जुक्ते श्वेत घोड़ों से युक्त रथ, तो हरे घोड़े निकले और इसके बाद दिव्य धनुष निकला, कवच और तुड़ी, इसके बाद प्रहलाद महाराज ने माला दिया, शुक्राचार्य ने शंख दिया, युद्ध की जो भी सामग्रियां थी इस तरह से ब्राह्मणों ने दिया, संपादित किया, यज्ञ कुंड से पैदा किए तो ये माना जाएगा कि ब्राह्मणों ने दिया, उसी को श्री सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं। एवं सदिप्रार्जित जो धनार्थन तय कल्पित स्वस्त्य नोथ दिप्राण प्रदक्षिणी कृत्य कृत प्रणाम प्रहलाद मामंत्र नमस्चकार। एवं इस प्रकार विप्रार्जित जोधनार्थ, जोधन अर्थ युद्ध करने के लिए जितनी भी सामग्रियां चाहिए सब ब्राह्मणों ने दिया। एक एक बात सोच सोच करके, और च शब्द इसमें आया है उसका अर्थ होता है कि जिन बातों का उल्लेख यहां नहीं है वे सब सामग्री भी ब्राह्मण दिए, जो भी युद्ध की सामग्री हो सकती है। और युद्ध की सामग्री देने के बाद उन लोगों ने फिर स्वस्ति वाचन किया, मंगल वाचन किया। बलि महाराज युद्ध के लिए तैयार हुए तो उनके सिख से नख तक हाथ आदि को छू छू करके शुक्राचार्य जी उसको अमोघ बना रहे थे, किसी का अस्त्र कभी काम नहीं कर सकता, तुम्हारा हाथ न कट सकता है न पैर कट सकता है न कहीं चमड़े में भी कोई छत बिछत नहीं हो सकता। वैदिक मंत्रों से नारायण कवच कहिए चाहे जो भी जैसा होगा वो मंत्र पढ़ पढ़ करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। इससे ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि युद्ध की सारी सामग्रियां हैं फिर भी हम जीत जाएंगे कोई गारंटी नहीं। बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत महत्व की बात होती है, प्रत्येक व्यक्ति को बड़े जनों का आशीर्वाद लेने की चेष्टा करनी चाहिए। युद्ध की सारी सामग्रियां हैं, यज्ञ कुंड से निकल रही हैं, फिर भी शुक्राचार्य स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, तुम्हारा मंगल हो, विजयी भव, सुखी भव, तुम्हारे अंग वज्र से भी न मारे जाए, एक बार तो मारे गए थे और फिर जा रहे हैं उन्हीं देवताओं से युद्ध करने के लिए, स्वर्ग जा रहे हैं, उस बार तो इस तरह बुरी तरह मारे गए थे और इस बार फिर युद्ध करने जा रहे हैं तो खतरा तो है, इसलिए वैदिक मंत्रों से उनका मंगल किया जा रहा है। इस तरह का मंगल सब जगह हम लोग देखे हैं, भारत में सिस्टम है, जब बच्चा कोई लड़का विवाह के योग्य होता है और विवाह करने के लिए ससुराल जाता है तो उस समय स्त्रियां या ब्राह्मण मंगल वाचन करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, तुम सुख से जाओ और लौटो, तुम्हारा गर्भस्थ जीवन सुखी हो, चावल छिड़क करके अंकुर छिड़क करके कुमकुम लगा करके आशीर्वाद दिया जाता। ऐसा नहीं केवल कार ठीक हो जाए और बस मंगल ही मंगल है नहीं, उसके बाद मंगल वाचन किया जाता है। करना चाहिए। फिर तो स्वस्थ स्वस्थैन का अर्थ स्वस्थि वाचन किया गया उनको वैदिक मंत्रों से, और तब विप्रान प्रदक्षिणी कृत्य बलि महाराज ब्राह्मणों की परिक्रमा किए, तीन चार बार परिक्रमा परिक्रमा करके, यहां हमेशा बहुवचन में रखा जा रहा है इसलिए कि यज्ञ करने में शुक्राचार्य के साथ साथ और भी ब्राह्मण, तो विप्रान प्रदक्षिणी कृत्य ब्राह्मणों की परिक्रमा करके इसके बाद प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद अपने कुल के सबसे बड़े प्रहलाद महाराज से आज्ञा मांगे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए, मैं विश्व विजय करना चाहता हूं। प्रहलाद महाराज ने आशीर्वाद दिया तथास्तु, ठीक है। और इस तरह सज करके बलि महाराज चले स्वर्ग जीतने के लिए। अथारुह्य रथम दिव्यं भृगुदत्तम महारथः सुश्रग्धरोथ सन्नय्य धन्वी खड्गी धृते सुभीर। एक पूर्ण योद्धा के भेष में सजे हुए बलि महाराज कैसे लग रहे हैं। भृगुवंशी शुक्राचार्य के द्वारा दिए हुए उस महान रथ पर वे चढ़े, स्वयं महारथी थे। जो व्यक्ति 10,000 रथियों के साथ युद्ध कर सकता है उसको महारथी कहते हैं, महारथ। तो बलि महाराज अपने आप में भी बहुत बड़े योद्धा थे और ये दिव्य रथ मिला, तो इस दिव्य अलौकिक रथ पर वे चढ़े। उस समय वे बहुत ही सुंदर माला पहने थे जो प्रहलाद महाराज ने पहनाया था, और इसके बाद सन्नह्य वे कवच बांधे, कवच बांध करके धन्वी धनुष लिए, उसके बाद खड़ग लिए तलवार, और धृत इसुधि और इसुधि तरकस बांधे पीछे बाण रखने, तलवार भी लिए धनुष बाण कवच सब कुछ पहनकर तैयार हुए। हेमांगद लसद बाहु स्फुरन मकर कुंडल, विश्व विजय के लिए चल रहे हैं बलि महाराज। उसमें सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करते हैं, हेमांगद लसद बाहु उनके दोनों भुजाओं में सोने के अंगद सुशोभित हो रहे थे। कंकर कहते हैं जो यहां बांधा जाता है, और अंगद कहते जो यहां बांधा जाता है। इस पर मुझे एक बात याद है कि वास्तव में जो वक्ता होता है केवल मुंह से कथा नहीं कहता है, वो हाथ से भी कहता है, सिर से कहता है। मैं बोल रहा हूं कि वो यहां बांधता है, लेकिन इस ऑडियो टेप में वो आएगा नहीं कि यहां का क्या अर्थ है। यहां मैं हाथ से कथा कह रहा हूं, इसलिए डायरेक्ट सामने बैठकर कथा सुनना चाहिए, यही विधि। यहां जो बांधा जाता है बांह के आधे भाग से ऊपर, इसको अंगद कहते हैं, और जो कलाई में बांधा जाता है उसको बाजूबंद या कंकर कहते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे थे वे, सोने के समान के स्वयं भी गोरे थे बलि महाराज स्वयं भी, और उस पर सोने का अंगद बांधे, और स्फुरन मकर कुंडल मकराकृत कुंडल उनके कानों में झलमला रहा था, बहुत सुंदर लग रहे थे। वीर तो थे ही, इसके साथ शारीरिक सौंदर्य से भी युक्त थे। रराज रथम आरूढ़ो, रथम आरूढ़ रथ पर आरूढ़ होकर के रराज बहुत सुंदर लग रहे थे। एक असुर के विश्व विजय का विवरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मन में बात है कि बलि महाराज तो महाभागवत है, तो रराज विराजमान हो रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। भीष्म स्थल वह हव्यवान, जैसे किसी कुंड में अपने स्थान में अग्नि प्रदीप्त हो ऐसा लग रहे थे। रथ जो था वो यज्ञ कुंड की तरह लग रहा था, और बलि महाराज अग्नि की लपट के समान ऐसे चमक रहे। सोने का कुंड हो और उसमें आग जल रही हो तो उसकी जो शोभा होगी, कुंड भी पीला पीला और आग भी पीला पीला, तो इस तरह से बलि महाराज चमक रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी यहां दृष्टांत देते, उपमा देते हैं, जैसे भीष्मस्थ यज्ञ कुंड में अग्नि शोभित होता है, इस तरह से बलि महाराज शोभा दे रहे हैं। और इसके साथ भी अकेले नहीं थे, तुल्य स्वज बल श्री भी स्वजूथ है दैत्य जूथ पे विबद्धि विवखम दृघि दहद भी परिधि, उनके ही समान बलवान और सुंदर जसस्वी असुरों के साथ भी घिरे हुए थे। अकेले बलि महाराज नहीं बलवान थे, इनके समान ही और भी बड़े बड़े बलि थे जिनके साथ चल रहे थे इनके सेनापति, और वे लोग ऐसे देख रहे थे दृष्टि से लगता था कि आकाश पी जाएंगे, इतना उत्साह था उन असुरों में। ये सब मारे गए थे, हराए गए थे देवासुर संग्राम में, लेकिन इसका अर्थ यह है कि इस बार भृगु जी ने जब शुक्राचार्य ने जीवित किया तो अन्य असुरों का भी बल बढ़ाया, उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। तो ऐसा लगता था कि वे लोग आंखों से आकाश को पी जाएंगे, विबंद भी निवर खम दृग भी दहद भी पर भी निवर, आंखों से ऐसे उत्साह से देखते थे असुर कि लगता था कि दिशाओं को जलाकर राख कर देंगे, अर्थात समस्त दिशाओं में जितने लोग हैं सबको भस्म कर देंगे, इतना तेज था उन असुरों में और उनसे बलि महाराज घिरे हुए। ब्रितो ब्रितो विकर्षन महतीम आसुरीम ध्वजनीम विभुः जय इंद्रपुरी श्रुद्धां कंपयन निवरोदसे। महतीम आसुरीम ध्वजनीम विकर्षन, तो अपने सेनापतियों से घिरे हुए थे, वे भी अपने अपने वाहनों पर थे, उस विशाल ध्वजनी को सेना को लेकर बलि महाराज गए अमरावती, जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समझिए ऑफिस है। देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ इस विश्व की व्यवस्था देखते हैं, शासन करते हैं, अमरावती कहते हैं, सबसे सुंदर नगर इस ब्रह्मांड में वही। तो वहां पर चढ़ाई कर रहे हैं, सेना को ध्वजनी कहते हैं क्योंकि रथ जितना रथ रहता है उस पर भी झंडा रहता है, ध्वज रहता है, जितने सैनिक रहते हैं सब ध्वज लिए रहते हैं, हमारा झंडा झुक नहीं सकता, तो सभी ध्वज लिए रहते हैं, इसलिए सेना को ध्वजनी कहा जाता है, जो ध्वजा से युक्त हो ध्वजनी। उस विशाल सेना को लेकर के गए कहां, इंद्रपुरी, इंद्र की नगरी में गए। इंद्र की नगरी के पास पहुंचे और चारों तरफ से नगर को घेर लिए, सेना को इस तरह सजाए। इंद्र नगरी के कई बड़े बड़े द्वार थे जिनसे देवता लोग निकला करते थे, तो चारों तरफ से घेरने का अर्थ यह था कि समस्त द्वारों को वे घेर लिए और घेर कर कुछ दूर से ही, और इसके बाद शंख ध्वनि किए चैलेंज देने के लिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और आप लोग आ जाइए। देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी, अतः देवता निश्चिंत हो गए थे, वे सोच रहे थे कि हमारे सारे शत्रु मर चुके हैं, बलि मर चुके हैं और ये हो चुका है, अब उनका साहस नहीं होगा कि वे हमारे पास आ सकते हैं। तो देवता सब अच्छा खाना पहनना भोगों में रहना इसी में लग गए थे, और असुर इधर यज्ञ कर रहे थे। देखिए तो जो व्यक्ति यज्ञ करेगा दान करेगा इस तरह से ब्राह्मणों की वैष्णवों की सेवा करेगा तो क्यों नहीं वो जीतेगा, और देवता होकर भी वे भोगों में पड़ गए। जब मनुष्य की विपत्ति दूर होती है तो संकट का दिन भूल जाता है और केवल भोग में देवता लोग रहने लगे, और असुर सब इधर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो देवताओं के हारने का समय आ गया। तपस्या से व्यक्ति महान बनता है वास्तव। इंद्रपुरी में गए, लगता था कि दिशाएं कांप रही हैं बलि महाराज के भय से, तो स्वर्गपुरी का इंद्रपुरी का वर्णन किया जा रहा है। 11.5 श्लोकों में श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वर्ग का वर्णन किया, खास करके इंद्रपुरी का। यहां एक प्रश्न उठता है कि इंद्रपुरी का वर्णन क्यों किया जा रहा है। उसका कारण है, श्रीपाद सिंधु स्वामी कहते हैं, धिक्कार है ग्राम्य सुख को कि देवताओं को भी अकस्मात अपना घर छोड़ना पड़ गया, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ गया, इसलिए स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह अभी क्षणिक है, नश्वान। बलि महाराज से बिना युद्ध किए ही देवता भाग जाएंगे, इतना प्रताप बढ़ा था बलि महाराज, इसलिए स्वर्ग का वर्णन पहले कर रहे हैं। रम्याम उपवनोद्यान श्रीमद्भि नंदनादि भी, इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग उपवनों और उद्यानों से अतिशय रम्य है। रम्य का अर्थ है देखने लायक, घूमने योग्य, रमण करने योग्य, देखते ही चित्त आनंद से उल्लसित हो जाता है, ऐसा है वो नगर, वो नगरी ऐसी है। किसी भी नगर की शोभा वास्तव में उपवन से और उद्यान से, उपवन फल प्रधान वन को कहते हैं, वृक्षों को, और उद्यान पुष्प प्रधान वाटिका को कहते हैं, तो फल के भी वृक्ष खूब हैं वहां, और ऐसे ऐसे फल हैं कि एक फल अगर तौला जाए तो बंबई में जितने फल हैं वो एक बार एक पलड़े पर हो जाएंगे, उधर एक फल, इतने बड़े बड़े, और छिलका गुठली बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र का है, केवल जूस ही जूस रहता है बस, पंचम स्कंद में वर्णन। तो वह इंद्रपुरी बहुत ही शोभित होती है, बहुत अच्छी लगती है। नंदन वन आदि वन है वहां, नंदन वैभ्राजक चित्ररथ सर्वतोभद्र, ये चार वन है, बहुत सुंदर वाटिका जिनमें केवल देवताओं का ही प्रवेश है, मनुष्य की तो कोई कल्पना ही नहीं। मनुष्य लोग से कोई कोई गए हैं, जैसे अर्जुन गए थे या कर्दम मुनि गए थे, महाराज मुचकुंद गए थे, बहुत कम जाते हैं, ये शरीर बदल करके जाते हैं देवता बन करके, तब उस सेवन करने को मिलता है। तो सबसे पहली शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि वहां बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बगीचे हैं, फल के बगीचे और पुष्प के बगीचे। पूजक विहंग मिथुनर गायन मत मधुव्रत, उन उपवनों में उद्यानों में कूजते हुए पक्षी रहते हैं, सब प्रकार के मंगलमय पक्षी रहते हैं, कौवा तो वहां है ही नहीं तय तय करने वाले, ये लिखा गया है शास्त्रों में, सबसे उत्तम श्रेणी के पक्षी वहां रहते हैं और वे कूजते रहते हैं। पक्षी जब आनंद में रहते हैं तो वे कूजते हैं, बोली बोलते हैं, सब कुछ कूजते रहते हैं, सुखी हैं, और गायन मत मधुव्रत, और भौंरे पुष्पों का पराग ले लेकर के मतवाले रहते हैं आनंद में, वे भनभन भनभन गाते रहते हैं। प्रवाल फल पुष्पो रूभार शाखा अमर द्रुम है, वहां अमर द्रुम है, कल्प वृक्ष, यहां जैसा कंटीला बबुल भरा हो ऐसा नहीं है। तो राजस्थान में देखे बस ये कहीं वृक्ष कल्प वृक्ष बचा हुआ है, केवल बबूल बबूल और कोई वृक्ष नहीं है उधर, लेकिन स्वर्ग में इसकी पहुंच नहीं है, वहां अमर द्रुम कल्प वृक्ष रहते हैं, और प्रवाल के भार से, फल के भार से और पुष्प के अक्षय भार से झुके रहते, भर शब्द तीनों में लगे, प्रवाल भर, फल भर, पुष्प भर, उरु भर, बहुत अधिक फले रहते हैं, बहुत अधिक पुष्पित रहते हैं, और प्रवाल कोमल कोमल पत्ते उनमें रहते हैं, भरे रहते हैं हमेशा, पतझड़ नहीं होता है वहां, कोई वृक्ष कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा नवीन रहता है उन बगीचों में। भगवान ने ऐसा बनाया है उसको, लेकिन वह भी सुख है, क्षण भंगुर है, वहां से हटना पड़ता है। स्वर्ग तो रह जाता है, लेकिन कई सेठ देवता बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा है बड़ी बड़ी ऑफिसें वही रह जाती हैं, लेकिन ऑफिसर्स बदल जाते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। इस तरह से स्वर्ग रहता है बहुत काल तक, लेकिन बीच बीच में बदलाव होता है। अब वर्णन कर रहे हैं कि उस इंद्रपुरी में, स्वर्ग में, बहुत सी नलिनियां हैं। नलिनियां का अर्थ है छोटी छोटी, छोटे छोटे सरोवर, जिनमें हंस, सारस, चक्रवाक और कारंडव तैरते रहते हैं। जल पक्षियों का वर्णन किया जा रहा है, हंस, सारस, चक्राह और कारंडव। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इन पक्षियों को देखा होगा, लेकिन इस लोक के जो पक्षी पक्षी हैं, इनसे वो दूसरे क्वालिटी के पक्षी होते हैं। जाति वही है, लेकिन फिर भी वो दूसरे भिन्न तरह के होते हैं। वहां के वृक्ष का साइज, फल आदि सब दिव्य है, पक्षी भी उसी तरह से हैं। और नलिनियों का वर्णन किया जाता है, क्रीड़ंती प्रमद, नलिनियों जत्र क्रीड़ंती प्रमदा सुरसेवता। श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उन सरोवरों में, छोटी छोटी तलाइयों में, प्रमदाएं क्रीड़ा करती रहती हैं, जल विहार करती रहती हैं। मतलब देवताओं की स्त्रियां, अप्सराएं, उन जलों में विहार करती हैं। प्रमदा सुर सेविता, देवताओं के द्वारा सम्मानित, देवताओं के द्वारा सेवित वे स्त्रियां उन सरोवरों में विहार करती हैं। इसके द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, इस प्रकार का जो हम लोगों के लोक में है। देवताओं की स्त्रियां हैं तो ऐसा नहीं कि उनको अब कोई काम करना है या और कोई दिक्कत है, वहां एक भी हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं, कोई बीमार पड़ता ही नहीं, वहां किचन नहीं है क्योंकि वहां पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने यहां दिव्य अमृत में फल आदि मिलते रहते हैं, वहां पकाया नहीं जाता, वहां अस्पताल नहीं है, श्मशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उपलक्षण बताया जा रहा है कि वहां की स्त्रियां केवल स्विमिंग करती रहती, उनको कोई काम नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, टेंशन नहीं है, जब मन करे तब तैरती रहती है, खेलती रहती है। क्रीड़ंती जत्र प्रमदा, स्वर्ग के सुख का वर्णन किया जा रहा है। जब आदमी सुख में रहता है तब क्रीड़ा करता है। सुर सेविता का अर्थ है कि उनके साथ देवता भी रहते हैं, तो वे सरोवरों में क्रीड़ा करते रहते हैं। आकाश गंगया देव्या वृतम परिख भूतया, वह स्वर्ग आकाश से गंगा, आकाश में जो गंगा जी हैं बहती हैं, बाद में पृथ्वी पर आती हैं, तो गंगा जी इंद्रपुरी के चारों तरफ परिखा के रूप में हैं, खाई के रूप में गंगा जी बहती हैं। और गंगा जी के दोनों तट पर बैदुर्ज मणि के घाट बने हुए हैं, कहीं भी धूली या कीचड़ का नामो निशान नहीं। जब बैदुर्ज मणि और मरकत मणि की भूमि बनी हुई है और चारों तरफ उस इंद्रपुरी की गंगा जी बहती है बहुत चौड़ी, इस तरह से वो सुंदर नगर है। प्राकारेण प्राकारेण अग्निवर्ण है ना, और जो प्राचीर है नगर के चारों तरफ वो अग्निवर्ण का है, मतलब सोने का है, सोने की चहरदीवारी बनी हुई है, चमचम चमकती रहती है वो चहरदीवारी, इसीलिए अग्निवर्ण कहा जा रहा है। यहां पर ऐसा नहीं कि ईंट और पत्थर और सीमेंट से चहरदीवारी बना दी गई है और मानते हैं बहुत अच्छा चहरदीवारी, वो अभी टूटा रहता है। लोग ईंट से बनाते हैं वो भी कहीं कहीं टूटा रहता है। और स्वर्ग की इंद्रपुरी की जो चहरदीवारी है वो चमचम चमचम अग्नि की तरह चमकता है। और उस चहरदीवारी के ऊपर बहुत से ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, उनको युद्ध कक्ष कहा जाता है। चहरदीवारी बनती है तो ऐसा मत समझिए कि वो केवल एक दीवार मात्र बनती है, एक बाउंड्री लेकर के घर जैसा चारों तरफ बनता है, उसके ऊपर अट्टालिकाएं बनाई जाती हैं और उसमें अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। कोई शत्रु आवे तो उसी गुंबद से ऊपर से ही आघात किया जाए, उसको अट्टालिका पर। देवताओं के लोक में भी खतरा है इस बात का, कभी कोई चढ़ाई कर सकता है, तो इसलिए वो लोग बना करके रखे। युद्ध का खतरा है और रूप में पट कपाटेश्चर द्वारा स्फटिक गोपुर है। कहीं कहीं गोपुर हैं, बड़े बड़े गेट नगर में प्रवेश करने के, उनके कपाट कैसे हैं? कपाट तो वज्र के बने हैं लेकिन सोने से भी मढ़े गए, पट लगाए गए जैसे ऐसे बेत लगाते हैं तो सोने के सब लगाए गए, सोने से मढ़े गए। बड़े बड़े कपाट जगह जगह बने हुए हैं, सोने से मढ़े गए हैं और दीवारें बनी हुई है स्फटिक मणि की। जुष्टाम विभक्त प्रथम विश्वकर्म विनिर्मिता, और सारे प्लान पूर्वक वो नगर बनाया गया है, कौन रास्ता किधर खुलेगा, किधर जाएगा, यहाँ क्या बसाया जाएगा, बहुत सुंदर ढंग से बसाया गया है। हमारे भारतवर्ष में तो लोग बसते जाते हैं, सड़क बाद में सोचते हैं, जो जिसका जहां मन किया बसता गया और बाद में सोचते हैं कि सड़क कैसे निकलेगी, तो ये नौबत आ जाती है कि तब घर ढाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। कितना गंदा है बंबई नगर। अब जो स्वर्ग की याद आ रही है तो कुछ इसकी याद आ रही है। इंद्रपुरी है वास्तव में, सब कुछ स्वच्छ है, सोना चांदी रत्न से जड़ा हुआ। और उसके प्लानर कौन है, मिस्त्री कौन है? विश्वकर्मा जी। ये विश्वकर्मा जी माता अदिति के पुत्र है, इंद्र के भाई है, द्वादश आदित्य में से एक है। इनके प्लान से, इनके अंदर काम करने वाले मिस्त्री सब बनाए। कोई वहां भाट्ठा लगा करके चिमनी और ईंट नहीं गई है, केवल रत्न से बना हुआ वो नगर सजाया गया है इस तरह से। विश्वकर्म विनिर्मितम, बनाने वाले सबसे बड़े शिल्पी विश्वकर्मा जी हैं। सभा चत्वर रथाढ्याम आढ्याम, उस सुसंपन्न है नगर इस से सभा से, स्थान स्थान पर सभा भवन बनाए गए। कभी कभी देवता बैठते हैं विश्व की व्यवस्था देखने के लिए, आपस में विचार करते हैं, मीटिंग हॉल बना हुआ जगह। और जोन बटा हुआ है कि इतने क्षेत्र में एक बनेगा सभा हॉल, वहां बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, सब कुछ प्लान करके बसाया गया है। और सभा चत्वर, और चत्वर का अर्थ है आंगन, आंगन का अर्थ होता है घर के पास पूरा खुला मैदान, कंजस्टेड नहीं। एक एक देवता का भवन है तो पूरा उसको आप बंगला नहीं कह सकते हैं, बंगला तो फिर भी थोड़े स्थान में होता है, पूरा एक नगर जैसा ही एक देवता के लिए रहता है, जिसके बाद चारों तरफ खुला है, उसको आंगन कहते हैं। अपने घर के अधिकार में होता है आंगन या आंगन का। और रथ्या, रथ्या का अर्थ है जहां पर रथ आसानी से चल सके, अर्थात राजमार्ग, बड़े बड़े मार्गों को रथ्या कहा है। सब बसाए गए, विमानय नैर्बुदैर वृता, और उस स्वर्ग में विमान भरे पड़े हैं। वास्तव में जितने भवन हैं सब विमान पर ही रहते हैं, आकाश में कितने विमान हमेशा उड़ते रहते हैं स्वर्ग में, 10 करोड़ कम से कम। ये गिनती के लिए निर्धारण किया गया है, इसका अर्थ है असंख्य उड़ते रहते, अर्बुद अरब का अर्थ है 10 कोटि संस्कृत में, 10 करोड़ विमान उड़ते रहते स्वर्ग में, और बिना पेट्रोल के मन से चलते, संकल्प से चलते। संकल्प से चलने वाली मशीन अब तक नहीं बन पाई इस पृथ्वी पर, है ना।